पृष्ठ संख्या 23, छायावाद युग, 1918 से 1936 ईस्वी। सन 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की कृति झरना के प्रकाशन से छायावाद का आरंभ माना जाता है, तो उन्हीं की कृति कामायनी 1935 ईस्वी के प्रकाशन तक जाकर अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त होता है। इस दृष्टि से जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कवि कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने इसे नई काव्यधारा का तृतीय उत्थान कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे स्वच्छंदतावाद नाम दिया है, जो अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिसिज्म के निकट जान पड़ता है। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने 1922 ईस्वी में जबलपुर मध्य प्रदेश से निकलने वाली पत्रिका श्री शारदा में किया। इसमें हिंदी में छायावाद शीर्षक से उनके चार लेख प्रकाशित हुए, जिनमें मुकुटधर पांडे ने छायावाद की अनेक विशिष्टताओं का उद्घाटन किया। अंग्रेजी और बंग साहित्य में जिसके लिए मिस्टिसिज्म शब्द का प्रयोग हुआ, हिंदी में वह छायावाद का पर्याय लगता है। अपने उक्त लेख में मुकुटधर जी ने बताया कि इन्वर्टेड कामा छायावाद एक ऐसी मायामय वस्तु है कि शब्दों के द्वारा उसका ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है, क्योंकि ऐसी रचनाओं में शब्द अपने स्वाभाविक मूल्य खोकर पृष्ठ संख्या 24 सांकेतिक चिन्ह मात्र हुआ करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद। रहस्यात्मकता ऐसी रचनाओं की विशेषता होती है। सरस्वती 1921 ईस्वी के अंक में श्री सुशील कुमार ने भी छायावाद का कुछ ऐसा ही विश्लेषण प्रस्तुत किया था। द्विवेदी युगीन कविता की इतिवृत्तात्मकता के प्रतिकार स्वरूप डॉक्टर नगेंद्र ने इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे सांस्कृतिक जागरण की संज्ञा दी है। डॉक्टर राम विलास शर्मा के अनुसार इन्वर्टेड कामा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मात्र नहीं था, बल्कि वह थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह भी था। इन्वर्टेड कामा बंद, जो मध्य वर्ग के नेतृत्व में हुआ। हिंदी के सुविख्यात आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इच्छावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है। प्रथम, रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से होता है तथा कवि असीम और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अभिव्यंजना करता है, और दूसरा, यह काव्य की एक विशेष प्रकार की शैली है, जिसमें लाक्षणिकता, मूर्तिमत्ता, प्रतीक विधान, विरोध, चमत्कार तथा विशेषण, विपर्यय आदि पर बल रहता है। शुक्ल जी ऐसी रहस्यवादी रचनाओं को यूरोपीय साहित्य के फैंटास माटा के निकट मानते हुए इसे स्वच्छंदतावाद करार दिए, जिसके लक्षण वह सबसे पहले मैथिली सरणगुप्त और मुकुटधर पांडे की रचनाओं में देखते हैं। पैराग्राफ चेंज। शुक्ल जी काव्य के क्षेत्र में रहस्यवाद को पसंद नहीं करते थे। उनकी दृष्टि में इसलिए कबीर बड़े कवि ना हो सके, उन्होंने असीम और अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम उद्गार करने वाले छायावादी कवियों को भी मधुचर्या का गान करने वाला कवि बताया, तथा उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की आध्यात्मिकता से भी प्रभावित बताया। यद्यपि कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी दोनों ने शुक्ल के उक्त मत का खंडन करते हुए शुक्ल जी के मत को भ्रामक बताया है, कविवर जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को मोती के भीतर छाया और तरलता, लावण्यता और कांति से उपमित किया, तो महादेवी ने इसे ईश्वर और जीवात्मा के बिंब प्रतिबिंब के रूप में देखा है। किंतु सुकुमार कवि पंत ने आलोचकों द्वारा दिए गए इस नाम की आलोचना की है। वह इसे छायावादी कवियों की काव्य प्रतिभा के उपहास के सूचक के रूप में समझते थे और इस शब्द को छायावादी कविता के साथ संगत नहीं मानते थे। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपनी कृति छायावाद में बहुत कुछ उक्त अर्थों का परिहार करते हुए लिखा है कि इन्वर्टेड कामा, जहाँ तक रहस्यवाद, छायावाद और स्वच्छंदतावाद शब्दों के शब्दार्थ और लोक प्रचलित भाव का संबंध है, इन तीनों में निसंदेह थोड़ा थोड़ा अंतर है। पृष्ठ संख्या 25। रहस्यवाद अज्ञात की जिज्ञासा है, तो छायावाद चित्रण की सूक्ष्मता और स्वच्छंदतावाद प्राचीन रूढ़ियों से मुक्ति की आकांक्षा। इन्वर्टेड कामा बंद। चूंकि छायावादी कविता में ये तीनों ही बातें पाई जाती हैं, इसलिए उसे छायावाद कहना संगत प्रतीत होता है। अगला पैराग्राफ छायावादी कवि द्विवेदी युगीन शुष्क नीरस और इतिवृत्त प्रधान शैली से ऊब चुके थे, फलतः उनके मन में काव्य अनुभूति की नव अभिप्रेरणा और नूतन अभिव्यंजना शैली के अभिधान ने जन्म लिया और वे कविता की नई इबारत लिखने के लिए उद्यत हो उठे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने ठीक ही लिखा है कि यूनाइटेड कामा नए युग का काव्य साहित्य यद्यपि नए निर्माण में लगा था, पर वह पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह नहीं बदल पाया। छायावाद युग ने इस अभाव की पूर्ति की। यूनाइटेड कामा बंद। छायावादी कविता का जन्म दो विश्व युद्धों की विनाशकारी पटभूमि पर हुआ, जिसके कारण मानवतावाद का मुखर स्वर इस कविता का संदेश बन गया। प्रसाद ने कामायनी के श्रद्धा सर का समापन करते हुए मनुष्य के नहीं बल्कि मनुष्यता के विजयी होने का आह्वान किया। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजय नहीं मानवता हो जाए। भारतीय नवजागरण की चेतना ने भी इन कवियों को भीतर तक झकझोरा। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी के काव्य और गद्य साहित्य में इसे स्पष्टता देखा जा सकता है। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद स्वामी, रामतीर्थ, रामकृष्ण परमहंस, अरविंद, रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र चटर्जी, गांधी आदि के अतिरिक्त कार्ल मार्क्स, फ्रायड, रूसो, डार्विन, हीगेल आदि के विचारों ने भी इन्हें स्पर्शित किया। भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषद, स्मृति ग्रंथों आदि से तथा संस्कृत, अंग्रेजी एवं बंगला कवियों के काव्य और विचार चिंतन ने भी इन कवियों को दूर तक प्रभावित किया, जिनमें इनके स्वयं के जीवन संघर्षों ने भी कम भूमिका नहीं निभाई। इस सब से मिलकर छायावादी कविता की पृष्ठभूमि निर्मित हुई थी। अगला पैराग्राफ। छायावादी कवियों ने भाव और शिल्प दोनों की जड़ता को तोड़ दिया। प्रेम और श्रृंगार यहाँ पहली बार नए रूप में चित्रित हुए। रीतिकालीन दैहिक भोग परकता की गंध जिसमें नहीं है, वह द्विवेदी युगीन थोथी नैतिकता और मर्यादा की झंझट। छायावादी कवि जी खोलकर हृदय के भावों को उन्मुक्त होकर सौंदर्य अभिबोध की सूक्ष्म गहराइयों में जाकर पूरी लाक्षणिक चित्रात्मकता, पृष्ठ संख्या 26, बिंबात्मकता और प्रतीकात्मकता के साथ भावों के उद्दीपन को जलाया। ग्राम्या में पंत ने लिखा, खोलो जीर्ण विश्वासों, संस्कारों के जीर्ण वसन, रूढ़ियों, रीतियों, आचारों के अवगुंठन, छिन्न करो पुराचीन संस्कृतियों के जड़ बंधन। इस प्रकार छायावादी कविता भाव और शिल्प दोनों के स्तर पर पुरातनता का निर्मोक छोड़कर आगे बढ़ी। वर्णिक गणवृत्तों की जगह मातृ गणवृत्तों की महत्ता स्थापित हुई और इस सबसे बढ़कर छंद क्रांति हुई। महाकवि निराला द्वारा मुक्त छंद का प्रवर्तन हुआ, जिसकी साक्षी बनी उनकी प्रथम रचना जूही की कली। बिजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तन तरुणी जूही की कली। दिगबंध किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी। यह कविता सरस्वती में नहीं छपी और उसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लौटा दिया, लेकिन यह मुक्त छंद की प्रथम रचना के रूप में मतवाला में प्रकाशित होकर छायावादी कविता के इतिहास में अमर हो गई। निराला इससे निराश जरूर हुए, पर टूटे नहीं और विकट होकर फूट पड़े। वे छंदों की मुक्ति को मनुष्य की मुक्ति से जोड़कर देखते थे, इसीलिए कविता को गजगामिनी कहते हुए उसे बंधनमय छंदों की छोटी राह छोड़कर आगे निकलने आने का आह्वान किया। यथा अर्ध बिकच इस बंधन कमल में आ तू, प्रिय छोड़कर बंधनमय छंदों की छोटी राह गजगामिनी, वह पथ तेरा संकीर्ण कंट का कीर्ण। निराला के मुक्त छंद का समर्थन उनके समकालीन प्रसाद, पंत आदि कवियों ने भी किया। प्रसाद ने पेशोला की प्रतिध्वनि तथा महाराणा का महत्व, तो पंत ने उच्छ्वासा, आंसू आदि कविताएं मुक्त छंद में लिखकर अपने सहधर्मी निराला का समर्थन किया। युगवाणी की नवदृष्टि शीर्षक कविता में पंत ने लिखा है कि पृष्ठ संख्या 27, खुल गए छंद के बंध, प्रास के रजत पाश, अब गीत मुक्त और युगवाणी बाती आयास। द्विवेदी युग की तरह छायावाद युग में भी महाकाव्य, खंड काव्य, कथानक काव्य, आख्यानक काव्य, गीत काव्य, चंपू काव्य, शक्ति काव्य, शोक काव्य तथा व्यंग्य काव्य आदि सब कुछ लिखे गए। छायावाद में सबसे अधिक गीत महादेवी जी ने रचे। निराला लिखित राम की शक्ति पूजा छायावाद का शक्ति काव्य तो सरोज स्मृत हिंदी का पहला शोक गीत है। जहाँ तक छायावादी काव्य की विशेषताओं का प्रश्न है, हमें इस युग की कविताओं में मोटे तौर पर कतिपय विशेषताएं देखने को मिलती हैं। एक, वैदिकता। दो, रहस्यात्मकता। तीन, प्रकृति चित्रण की विशिष्टता। चार, नारी सौंदर्य एवं प्रणय अनुभूति। पाँच, वेदना एवं करुणा की विव्रति। छः, कल्पना एवं भावुकता का अतिरेक। सात, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक चेतना। आठ, नूतन शिल्प विधान। द्विवेदी युग की सामाजिकता छायावाद की वैदिकता में परिणित हो गई। इस प्रवृत्ति का प्रथम उच्च रीतिकाल के रीति स्वच्छंद धारा के घनानंद जैसे कवियों के काव्य में देखा जाता है। छायावादी कवियों ने अपने स्वयं के भोगे हुए तथा अनुभव किए हुए जीवन के सुख दुखों को अपनी कविताओं में पूरे प्रीत्यार्थ भावों के साथ रखा। पंत की ग्रंथि प्रसाद की आंसू, निराला की सरोज स्मृति और महादेवी का तो पूरा काव्य ही मैं नीर भरी दुख की बदली अंतर्मन की वेदना का पारावार प्रतीत होता है, जो उद्धरण दृष्टव्य है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। जयशंकर प्रसाद। मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांध वेला। निराला। पृष्ठ संख्या 28। वैदिकता के अतिरिक्त रहस्यात्मकता भी छायावादी काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। छायावाद के अंतर्गत महादेवी जी सबसे अधिक रहस्यात्मक रही हैं। असीम और अनंत सत्ता के प्रति प्रणय, नैवेद्य, आश्चर्य और समर्पण के भाव, व्योम एवं प्रकृति व्यापी विविधताओं ने इन कवियों को भीतर से रहस्यवादी बना दिया। क्या पूजा क्या अर्चना रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी सांसें करती रहते नित्य प्रिय का अभिनंदन रे। महादेवी वर्मा। छायावादी कवियों का प्रकृति चित्रण भी अनूठा है। उन्होंने अनेक नवीन अप्रस्तुत विधानों के माध्यम से प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण किया है। प्रकृति यहाँ सुख दुख की साहचरी है। आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, उपदेशक, प्रतीक आदि नाना रूपों में प्रकृति के मनोरम रूप यहाँ विद्यमान है। छायावादी कवियों ने द्विवेदी युगीन अविधामूलक इतिवृत्त की जगह लक्षणा और व्यंजना से प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य को निहारा और निखारा है। निराला की संध्या सुंदरी, बादल राग, पंत की नौका विहार, मौन निमंत्रण, एक तारा, महादेवी की प्रिय सांध्य, गगन मेरा जीवन जैसी अनेक रचनाओं में प्रकृति का यह रूप देखा जा सकता है। प्रकृति के कोमल रूप के चित्रण के अलावा पंत की परिवर्तन जैसी कविताओं में उसके कठोर रूप का भी सूक्ष्म अंकन हुआ है। कामायनी के चिंता सर का प्रलय वर्णन भी इसी के अंतर्गत आता है। प्रकृति के कोमल रूप का एक उदाहरण दृष्टव्य है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। जयशंकर प्रसाद। नारी के प्रति छायावादी कवियों का दृष्टिकोण भक्ति या रीतिकालीन कवियों के दृष्टिकोण से पृथक है। यहाँ वह ना तो माया का दूसरा रूप है, ना केवल भोग विलास का। यहाँ वह द्विवेदी युग की अवला भी नहीं है, बल्कि वह पूरी तरह मानवी है। नारी यहाँ देवी, माँ, प्रेयसी, सहचरी आदि रूपों में सम्मानित है। विधवा के रूप में वह अबला नहीं, बल्कि इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी पवित्र लगती है। वह ममतामयी, कल्याणमयी, प्रेममयी, दयामयी, श्रद्धामयी, करुणामयी और शक्तिमयी है। वह सकल ऐश्वर्यों की संधान है। अकेली सुंदरता कल्याण, सकल ऐश्वर्यों की संधान, देवी माँ सहचरी प्राण। पंत। पृष्ठ संख्या 29। छायावादी कवि उसे श्रद्धा विश्वास रूपिणी समझता है। उसके पत्थर तोड़ने में भी जीवन का सौंदर्य देखता है। रीत युगीन कवियों की तरह नारी यहाँ भोग्या नहीं, श्रद्धा है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो प्रसाद, उनकी जिन भावों में रीत युगीन कवियों ने काम वासना देखा था, छायावादी कवि उन्हीं में करुण भावों में नीला आकाश को देखता है। करुणा और वेदना की विवृति छायावादी काव्य की एक बड़ी विशेषता है। इन कवियों की कविताओं में इनके स्वयं के जीवन संघर्षों से उपजा दुख राग विराग बनकर इनकी कविताओं में फैल गया है। छायावादी कवियों की यह वेदना अत्यंत गहरी है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही निराला। कल्पना और भावुकता का अतिरेक छायावाद की एक अन्यतम विशेषता है। स्वच्छंद वृत्ति के कारण इन कवियों के काव्य में कल्पना और वायवीयता की प्रधानता है। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपनी कृति छायावाद में लिखा है कि इन्वर्टेड कामा, कल्पना का जितना गुणगान छायावाद में हुआ उतना कभी नहीं हुआ था। छायावाद में कविता और कल्पना पर्याय हो गए। इन्वर्टेड कामा बंद। निराला ने कविता को कल्पना के कानन की रानी कहा तो प्रसाद ने सुखदान और मनुज जीवन प्राण के रूप में उसकी कल्पना की है। हे कल्पना सुखदान, तुम मनुज जीवन प्राण, तुम विशद व्योम समान। राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक चेतना का प्रवाह छायावादी काव्य की आत्मा है। भारतेंदु युग के पुनर्जागरण और द्विवेदी युग के नवजागरण से आगे बढ़कर पराधीनता के युग में शक्ति की मौलिक कल्पना करते हुए इन कवियों ने देश की जनता को नए सिरे से जगाने का काम किया। प्रसाद ने काव्य के अतिरिक्त चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि नाटकों के माध्यम से भी यह कार्य किया। निराला का भारत जय विजय करे एक बार और नाच तू श्यामा, जागो फिर एक बार प्रसाद का अरुण यह मधुमय देश हमारा, हिमद्र तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, महादेवी का जाग तुझको दूर जाना आदि ऐसे ही जागरण गीत हैं और राष्ट्रीय भावभूमि की कविताएं हैं जिनको पढ़कर आज भी मन में ऊर्जा का संचार हो जाता है। प्रसाद ने पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण और छत्रपति शिवाजी का पत्र जैसी अनेक राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं की। अतीत का गौरव गान का वर्तमान को उसका एहसास कराना इन कवियों का लक्ष्य था। पृष्ठ संख्या 30। एक योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। दो चिर सजग आँखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा जैसी रचनाओं के माध्यम से निराला ने युग के संघर्ष को चित्रित किया है। ऐसी अनेक ऊर्जावान रचनाओं के कारण ही छायावाद का काव्य शक्ति काव्य कहलाता है। छायावादी कवियों ने इसके लिए परंपरागत सौंदर्य के अविधानों को त्याग कर नूतन अभिव्यंजना शिल्प का सहारा लिया। आचार्य शुक्ल ने कहा था, इन्वर्टेड कामा, छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। इन्वर्टेड कामा बंद। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा एवं डॉक्टर नामवर सिंह जैसे समीक्षकों ने शुक्ल जी की इस अधूरी दृष्टि से आगे बढ़कर छायावाद की उपलब्धियों की व्याख्या में बताया कि इन्वर्टेड कामा वह एक अभिव्यंजना की शैली मात्र नहीं था बल्कि और भी बहुत कुछ था। इन्वर्टेड कामा बंद। छायावादी कवियों ने द्विवेदी युगीन खड़ी बोली को मांझकर उसे मार्दव बनाकर कोमल कांत सांस्कृत निष्ठ पदावली के साथ लक्षण और व्यंजना के माध्यम से बिंबों, प्रतीकों, चित्रों, अलंकारों, सूक्तियों, व्यंग्य वैचित्र्य, नूतन छंद विधानों, नाद सौंदर्य, सरस गीतों, राग और संगीत के विधानों आदि के माध्यम से शिल्प का ऐसा अभिनव और अप्रतिम रूप प्रस्तुत किया कि खड़ी बोली में ब्रजभाषा का सा माधुर्य प्रवाहित हो उठा। इन कवियों ने शिल्प का एक नया सौंदर्य शास्त्र ही गढ़ दिया जिसका हाथ थाम कर हिंदी कविता आगे बढ़ी।